भगवान का श्लोक, श्री कृष्ण के श्रीमुख का श्लोक आप सब उच्चारेंगे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् एतदिसिद्धये यततां अपि सिद्धानां यततां अपि सिद्धा कश्चित् वेति मां तत्त्वतः। गीता का ये श्लोक सभी साधकों को, सिद्धों को, जतियों को, जोगियों को आखिरी उन्नति के शिखर की खबर देता है। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई विरले ईमानदारी से साधना के तरफ चलते हैं। धार्मिक तो लाखों लोग हैं और उन लाखों लोगों धार्मिकों में कोई कोई सिद्धि के तरफ यत्न करता है और लाखों लाखों सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में से किसी किसी को सिद्धि की प्राप्ति होती है और उन कई सिद्धों में से भी कोई आखिरी में विरला है जो तत्वतः ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। वह आत्म साक्षात्कार इतनी ऊंची चीज है कि जिसके दीदार और अनुभूति के बिना भगवान कृष्ण के दर्शन, श्री राम के दर्शन, शिव जी के दर्शन, काली माता के दर्शन करने वालों को भी आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार किए बिना उनकी साधना अधूरी हुई और आत्म साक्षात्कार की तब उनको तृप्ति मिली, पूर्णता मिली। भागवत में कथा आती है कि प्रचेताओं ने भगवान शिवजी की ऐसी आराधना की, ऐसी एकाकारता से शिवजी की स्मृति की कि उनकी वर्षों की तपस्या सिद्धि को उपलब्ध हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान चंद्रमौली ने वरम ब्रूयात, भगवान हमारा जिसमें कल्याण हो ऐसा आप हमें आज्ञा दीजिए, उपदेश दीजिए, दीक्षा दीजिए। हम आप ही से नारायण भगवान को रिझाने की दीक्षा चाहते हैं। भगवान शिव ने भगवान नारायण के दर्शन की दीक्षा दे दी। साधना चली चली श्रीमद् भागवत में कथा आती है, प्रचेताओं को भगवान नारायण के दर्शन हुए, फिर भी उनकी पूर्णता बाकी रह गई। और जब देव ऋषि नारद के द्वारा आत्म साक्षात्कार हुआ तब प्रचेताओं की साधना संपूर्णता के शिखर तक पहुंची। भगवान नारायण के दर्शन तो क्या, भगवान नारायण के पार्षद होकर जय विजय वैकुंठ में ही वास करते थे और सनकादि ऋषि ब्रह्मज्ञानी मौज से नारायण को मिलने गए तो उन्होंने बैत से उनको खदेड़ दिया, फिर से आए, फिर खदेड़ दिया, फिर आए, खदेड़ दिया, फिर आए, बोले चार चार बार, तीन तीन बार हमें खदेड़ा गया। तुम नारायण के धाम तक पहुंच गए, नारायण की तपस्या करके नारायण के द्वारपाल होने की सेवा तक पहुंच गए, लेकिन अभी तुम्हें तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ और तुम्हारा व्यवहार ब्रह्मज्ञानियों के प्रति सूझबूझ का नहीं, तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ, दैत्य योनि को प्राप्त हो जाओ, एक बार नहीं तीन तीन बार। भगवान नारायण ने सुना और आए, सेवक की भूल स्वामी की मानी जाती। आप महापुरुषों ने जो कहा है वो होके रहेगा, लेकिन स्वामी को भी इसका दंड मिलना चाहिए। ये जय विजय हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु होंगे तो मुझे नरसी अवतार लेकर इनके उद्धार के लिए मुझे भी थोड़ा सहना होगा, और ये कुंभकर्ण और रावण बनेंगे तो मुझे रामा अवतार में हाय सीते हाय लक्ष्मण करके प्रायश्चित करना होगा, और ये दंतवक्र और शिशुपाल होंगे तो मुझे कृष्ण रूप में आना होगा। भगवान ने कहा कि तत्वतः जो महापुरुष होते हैं उनको पहचानना सबके वश की बात नहीं है। दुनिया इन अवतारों के निमित्त भी मेरे तत्व ज्ञान को संतों के ऊंचाई के अनुभूति को जानने में ये जय विजय को श्राप भी आपने दिया है तो लोक मांगल्य का ही संतों से काम होता है। शिरोधार्य है संत प्रवरों की आज्ञा। और तुमने सुना होगा कि राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, सेवक तो तीन बार अवतरित हुए, स्वामी को चार बार आना पड़ा। भगवान वराह होकर कच्छप अवतार कच्छप होकर आए हिरणाक्ष को मारने के लिए, भगवान नरसिंह होकर आए, भगवान राम होकर आए, भगवान कृष्ण होकर आए। तो ये ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई का कितना महत्व है। 1680 में सैयद खानदान में जन्म हुआ। गुरु इनायत शाह की शरण में जाने वाले बुल्ला शाह बोलते हैं, मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिल लोचे तकत हजारे नू, मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिल लोचे तकत हजारे नू, लोकी सिजदा लोको सिजदा काबे नू कर दे साडा सिजदा, यार प्यारे नू गुरु प्यारे नू होना है। अवगुण वेखन बुल्ला मिया रांझा, अवगुण वेखन बुल्ला मिया रांझा, याद करिया उस कारे नू, मैं अन तारू तरन न जाना, शरण पई तुद तारे नू, मैं अन तारू तरन न जाना, शरण पई तुद तारे नू, तेरा सानी कोई नहीं मिलिया, ढूंढ लिया जग सारे नू, तेरा सानी कोई न मिलिया, ढूंढ लिया जग सारे नू, बुल्ला शाहूदी प्रीति अनोखी, तारे अवगुण हारे नू, ओ अवगुण हार, तू तारने वाला मेरा मुर्शिद, मेरा सिजदा तो तेरे कदमों में है, मेरा सिजदा तो तेरी वाणी में है, मेरा सिजदा तो तेरे इशारों में है, मेरे तारण हार। सतयुग में ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुषों का खूब खूब प्राकट्य होता था, इसलिए मंदिर मस्जिद गिरजाघरों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, थे ही नहीं। द्वापर में भी ये उपासना घरों की परंपरा नहीं थी। त्रेता में द्वापर और कलयुग के संगम युग में ये उपासना पद्धति चली, क्योंकि सतयुग में सात्विक बुद्धि थी, सात्विक आचार था, लोग सत्य ही बोलते थे, धर्म का आचरण करते थे और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को पहचानते थे और ब्रह्मज्ञानी का उपदेश उनको पच जाता था। युग बदले, सत्वगुण में रजोगुण बढ़ा, फिर युग बदला और तमस का अंश बढ़ा, कई लोग ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी होने की घोषणा कर देते थे और कई लोग ब्रह्मज्ञानियों को अपनी मति गति के अनुसार तोलते और फिर उनकी खोपड़ी रूपी तगड़ी डोलने लग जाती थी। तो स्याणे ब्रह्मवेताओं ने निर्णय किया कि अब लोगों की मति गति देह में आ गई रजोतमो गुण से और बाहर के जगत में आ गई, ब्रह्मज्ञानी को तत्व रूप से पहचानने की मति अब न रही। और उस मति के न होने का प्रमाण भगवान कृष्ण का यह वचन देता है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई विरला चलता है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्ध है, कोई बिरला सिद्धि के लिए तो चलता है। धार्मिक तो सब हो जाते हैं, लेकिन आत्म शुद्धि, हृदय की शुद्धि, सत्व की मुड़ी के लिए कोई विरले चलते हैं। उनमें से कोई विरला पहुंचता और उन विरले पहुंचे हुए में कोई आखिरी में तत्व का अनुभव करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतदि सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चित् वेति माम तत्वतः। मुझ चैतन्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कोई विरला ही कर पाता है। राम जी के दर्शन तो हो जाते, लेकिन राम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि है और वर्षों तक राम जी की सेवा करते हैं। और राम जी जब अयोध्या में अति प्रसन्न होते हैं तब तत्व ज्ञान का उपदेश देते और हनुमान को आत्म तृप्ति का साक्षात्कार हुआ। और हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि अब मैं कैसा लगता हूं। बोले जगत दृष्टया स्वामी तुम सेवको अहम, सृष्टि दृष्टया ईश्वरो तुम जीवो अहम, लेकिन आपकी कृपा और तत्व ज्ञान की दृष्टि से तात्विक दृष्टया तवो अहम सो अहम, जो आपका आत्मा है वो मैं हूं और जो मैं है वही आप हैं, हम न तुम दफ्तर को। सभी धर्मों में उपासनाओं में अपनी अपनी सज्जनता ऊंचाई सतुपदेश है, लेकिन वैदिक संस्कृति में जीते जी परमात्मा के साक्षात्कार का जो प्रसाद मिलता है और किसी मजहबों में नहीं। उन मजहबों में से जिन्होंने हिम्मत की और वैदिक संस्कृति का प्रसाद पाया वे सूफीवाद चले। मंसूर को साक्षात्कार हुआ था, लेकिन विरोधियों ने विरोध खूब किया। सुकरात को साक्षात्कार हुआ था, विरोधियों ने उन्हें जहर का प्याला। लेकिन भारत में साक्षात्कारी पुरुषों को अभी भी पहचानने वाला हृदय, पहचानने वाली मति और गति है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आदा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी का एक संग हेता। उस एक अकाल पुरुष के साथ उसका ऐसा सीधा संबंध हो गया जैसे बिंदु बिंदु नहीं रहा सिंधु हो गया, सिंधु सिंधु नहीं बिंदुओं में देखता है, तरंगों में भी देखता है और अपनी महिमा में भी है। ऐसा दरिया स्वरूप व्यापक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मवेताओं की महिमा हिंदुस्तान में ही परंपरा से मिलती है। अन्य जगह पर तो शूली पर या तो जहर की प्यालियों पर उनको लाया जाता। भगवान का दर्शन करते हैं फिर भी उनका द्वेष नहीं मिटा। शंकर भगवान के यहां, शंकर भगवान के सेवक सेविकाएं रहते। शिवजी समाधि में चले जाते, वर्षों की समाधि के बाद जब उतरते हैं अपने व्यवहारिकता में तो पार्वती उनके चरणों में जो कुछ पत्रम पुष्पम जो की, पार्वती से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सत्संग आदि करते हैं। उठते हैं वो आनंद से डमरू बजाते, हमारी कोई कीमत ही नहीं, अपना प्रभाव दिखाए बिना कौन पूछता है। शिव जी के इर्द गिर्द रहने वाली योगियों ने योगिनियों ने मिलकर अपनी योग शक्ति का चमत्कार करना चाहा। शिवजी के धाम शिवलोक में रहती हैं, लेकिन शिव तत्व का साक्षात्कार नहीं है। योग वशिष्ठ महारामायण में एक कथा आती है, वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। आप राम के बराबर हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, और मैं वशिष्ठ जी महाराज की बराबर ही हूं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन राम जी जो सुनने के सौभाग्य को पाते और वशिष्ठ जी जो कथा करने की ऊंचाइयों को छोते, उन दोनों का फायदा हम लोग ले रहे हैं आज के लिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी उन योगिनियों ने, शंकर भगवान समाधि में थे और उन योगिनियों ने क्या करा, पार्वती का किडनैप कर लिया। किडनैप शब्द शास्त्रों में नहीं है, अपहरण कर लिया। और पार्वती का पुलाव बनाया, चावल के साथ मीट मिलाकर जो नॉन वेज करते हैं, ऐसा पार्वती का पुलाव बनाया और भगवान शंभ सदाशिव के लिए कटोरा धर दिया और फिर उत्सव मनाकर खाया पिया। जब शिव और वहां फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती कैलाश में, वहां तो पूरा फ्रिज फ्रीजर ही है सारा मामला। शिव जी जब समाधि से उठे तो पार्वती की जगह पर किसी देवी ने वो कटोरा धर दिया प्रसाद का। अंतर्यामी शिव जी ने देखते ही पहचान जान गए, जरा सी आंख लाल की और वो देवियां घबराई जोगिनियां। अलम्बुषा ने आ करते हुए योग बल से नासिका निकाली तो झावींती ने कान निकाला, फलानी ने ये निकाला। उन योगिनियों के नाम है योग वशिष्ठ में। और फिर पार्वती के अंग एकत्रित करके अपनी योग शक्ति से पार्वती को वोहू कर दिया और शिव जी का फिर से विवाह करा दिया और भोले भंडारी उद्धार दानी उन पर प्रसन्न हो गए। शिव जी का दर्शन, शिव जी की कृपा होते हुए भी शिव तत्व का साक्षात्कार नहीं है तो अभी समता नहीं है। गीता में सबसे बहुत सारी विद्याएं हैं गीता में, लेकिन सबसे ऊंचे में ऊंची आखिरी विद्याओं की आखिरी समत्व योग है। और समत्व योग भगवान के दर्शन के बाद भी समत्व योग पाना बाकी रह जाता है। शिव जी का दर्शन हो, काली माता का दर्शन हो, राम जी का दर्शन हो, कृष्ण जी का दर्शन हो, फिर भी समत्व योग बाकी रह जाता। नामदेव की माता शादी हुई और पति स्वर्गवास हो गए। नामदेव का जन्म कैसे होगा? खूब पति के विरह में दुखी रहती थी। पिता ने किसी सत्पुरुष के चरणों में दीक्षा दिला दी। मुझे तो पति की याद आती है, पति के बिना स्त्री का जीवन। बोले अब तुझे असली पति से मिला दे, भगवान को ही पति मान के शव ही विठल ही तेरा पति। और निर्दोष हृदय की कन्या भगवान को पति मानकर जैसे पतिव्रता निलाती खिलाती पिलाती ऐसी सेवा करती रही और उसका मन थोड़ा मुड़ गया। देखा कि और गृहस्थी माया अपने बच्चों को गोद में लेकर घूमती है, अगर आप मेरे पति हो तो मेरा बालक कहां? मेरे ठाकुर जी पति है, मेरे पति दुकानदार को मूर्ति दिखती है, नास्तिक को कल्पना दिखती है, लेकिन उपासना कोई मूर्ति और कल्पना नहीं है। हमारे मन की दिव्यता की यात्रा करने की सुसज्ज व्यवस्था है, श्रेष्ठ परिणाम लाने की एक उपासना पद्धति है। आप पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर सके ऐसी उपासना पद्धति ठोस है। तो भगवान की पूजा करते करते रात्रि को पतिदेव के शयन की व्यवस्था करती और चरण चंपी की भावना से उस भगवान की सेवा करते करते मन में एकदम प्यार उभरा के मेरे पतिदेव बस अब वो नारियों की जो बालक की लालसा होती है वो भारी। और वो पवित्र देवी को पतियों के पति का एहसास हुआ और गर्भ रह गया, उसी से नामदेव प्रकट हुए। इतने पवित्र आत्मा जिनके भगवान पिता है जयराम जी, ऐसे नामदेव सावतामाली ज्ञानेश्वर महाराज मुक्ताबाई और दूसरे संत यात्रा करने निकले। यात्रा करते करते गोरा कुंभार का घर बीच में पड़ता था। सब अतिथि हुए और गोरा कुंभार बड़े आदर से संतों का सेवा आदि करता था। मुक्ताबाई ने देखा थापी को, ये क्या है काका? हा काय आहे? बोले ये घड़े कच्चे की पक्के उसको परखने के लिए थापड़ी है। तो बोले हम लोग भी तो घड़े हैं ब्रह्मा जी के, हम लोग भी कौन पक्का साधक है कौन कच्चा है, कौन पक्का संत कच्चा संत, हमारी भी परीक्षा करो ना। सारे संत सहमत हो गए और गोरा कुंभार सबकी डाल पर टकोरे मारने लगे। जब नामदेव का वारा है तो उनकी टाल पे टकोरा लगा तो नामदेव जी की समता तो अभी विट्ठल के दर्शन तो करते थे मंदिर में और विट्ठल से बातचीत भी करते थे। जैसे आप हम बात करें ऐसे विट्ठल की मूर्ति से विट्ठल प्रकट होते और नामदेव और विट्ठल की बात। विट्ठल अगर आज्ञा दो तो मैं ज्ञानेश्वर के साथ यात्रा करने को जाऊं। विट्ठल ने कहा ज्ञानेश्वर को बुलाओ। ज्ञानेश्वर के आगे विट्ठल ने कहा कि इनको ले जाओ, ये मेरा भोला पुत्र है, इनका जरा ख्याल रखियो। कितनी ऊंची उपासना पद्धति है आपके भारतीय संस्कृति में, आपके वैदिक संस्कृति में। आप दो रोटी कमाकर दो बच्चों को जन्म, चार जन्म बच्चों को जन्म देकर दो चार जमाई दो चार पुत्र वधुएं करके और संसार में दुखी होकर मरने के लिए नहीं आए। संसार आपके शरीर को मारे उसके पहले आप अपने अमर ऐश्वर्य को पाने के लिए आए। ये ज्ञान आपकी वैदिक संस्कृति। औरंगजेब को खरी सुनाने वाले निपट निरंजन महाराज, निपट निरंजन के चरणों में औरंगजेब जैसा अकड़ू गया और उनसे दुआ लेने की, तुम्हारी दुआ से मराठे जोर में आ गए, हमारे ऊपर भी कृपा करो। बोले शर्मद को तो मरवा दिया, बाप को तो जेल में डाला और भाइयों को तो मार दिया और दुआ लेने मेरे पास आया। इस प्रकार की ऐसी रोकड़ी सुनाई कि एक दिन के लिए गया हुआ 7 दिन उसको गुरु के आश्रम में रहना पड़ा और वो आश्रम अभी भी औरंगाबाद में मौजूद मिला। मैं इन आंखों से देख गया। दत्तात्रेय भगवान ने दीक्षा दी थी, उनके आज्ञा से चौरंगीनाथ ने दीक्षा दी थी। ऐसे दत्तात्रेय। नरसिंह मेहता ने कहा जहां लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं त्यां लगी साधना सर्व अधूरी। जब तक आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान, तब तक सारी साधनाएं अधूरी है। आप वैकुंठ में चले गए, अयोध्या में चले गए, अयोध्यापति आपके आगे प्रकट हो गए। अभी भी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अयोध्यापति को प्रकट करके दर्शन किया, लेकिन साधना अभी भी उनकी तत्व ज्ञान की यात्रा चालू है। नाम पूछना चाहो तो मैं बता सकता, उनको देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूं। जिनको गायत्री देवी का साक्षात हुआ है, बातचीत हुई, दर्शन हुआ, हनुमान जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ, फिर भी उनकी अभी भी तत्व ज्ञान की यात्रा बाकी। रामकृष्ण को माता जी का दर्शन हुआ, फिर भी तत्व ज्ञान के लिए तोतापुरी गुरु की यात्रा के रास्ते चलना हुआ। ये तत्ववेताओं के साथ, ब्रह्मवेताओं के साथ मोहब्बत करनी नहीं पड़ती, हो जाती। कृष्ण के साथ गायों को बछड़ों को मोहब्बत करनी नहीं पड़ी। बाला मर्दानों को नानक के साथ मोहब्बत करनी नहीं पड़ी। सलूका मलूका और दूसरे राजे पुण्यात्माओं को कबीर से मोहब्बत करनी नहीं पड़ी, हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो ही जाती है। वह शोला खुद ही भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। वो शोला खुद ही भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, यह वो निगमा है, हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो निगमा है जो हर साज पे गाया जाता। इस निगमे के लिए कोई खास दिल पसंद किए जाते, खास दिल पसंद किए जाते नहीं। जिन के ऊपर खास इनायत होती है उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ती है और वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को पिलाया जाता है। शरद पूनम की रात कृष्ण के रस के साथ बात। शरद पूनम की रात को चुना गया और बंसी को निमित्त बनाकर निगाहों से जो पिलाया गया, पिलाने वाला तो है खुद तत्व स्वरूप श्री कृष्ण, लेकिन पीने वाले जिस धरती पर नाचे पिए झूमे उस धरती की मिट्टी तो उठ गई, लेकिन मिट्टी जिस मिट्टी को छुई वो भी आज वृंदावन का गोपी चंद होकर लोगों के ललाट तक अपना
मोहब्बत की खबरों का संदेश दे रहा है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने वश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव। तो उस तत्व स्वरूप से, आत्मदेव से मोहब्बत की नहीं जाती, पुण्य जोर पकड़ता है तो मोहब्बत हो जाती है। यह वह शोला है, खुद ही उमड़ उठता है, भड़काया नहीं जाता। ये वहम मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूर होते हैं। यह वो निगमा नहीं, निगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, कोई खास दिल पर ये निगमा गाए। भगवान ने कहा समता, तत्व ज्ञान से जो समता आती है, ऐसी समता बिना साक्षात्कार के कभी आ ही नहीं सकती। चाहे भक्ति में प्रखर हो, योग में प्रखर हो, ज्ञान का बस दरिया हो, अगर समता नहीं तो वो सिद्ध पुरुष नहीं, साधक है। समता आ गई बस सिद्ध हो गया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और श्री कृष्ण की समता है, बाप रे बाप। राम जी की समता, अल्लाह रे अल्लाह। मेरे गुरुदेव की समता है क्या फैज है मेरे साकी का, अपने हिस्से की भी समाज को पिला देता, फिर कूटती नहीं।